नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे आसपास हो रहे युद्धों की, विशेषकर जो ईरान इसराइल का युद्ध आरंभ हुआ है और उसके अतिरिक्त तो बहुत से युद्ध चल रहे हैं और बहुत समय से चल रहे हैं। हमारे साथ हैं आज काफी दिनों बाद जनरल पीआर शंकर। स्वागत है जनरल शंकर आपका जयपुर में।
स्वागतम। थैंक्स अ लॉट। और आपने बुलाया, बहुत दिन के बाद हम मेल मिलाप कर रहे हैं और
जी
आप
हाँ,
बात
अभी इलेक्शन सीजन
लो
चालू हो गया है
हो
तो
गया। तो
वी हैव टू थैंक ईरान कि उसने कुछ
हमें
ऐसी बात शुरू
मिलाया
की मिलाया।
नहीं। एंड ये बात भी है कि हमारा जो इलेक्शन है ना, वो काफी कलरफुल होते हैं, रोचक होते हैं और उसमें
बिल्कुल
ज्यादा
बिल्कुल।
एंटरटेनमेंट, अपार्ट फ्रॉम सीरियस थिंग्स, एंटरटेनमेंट भी होता है।
और लोकसभा वाले तो
और
बहुत लंबा चलते हैं।
बहुत लंबा चलते हैं। और असली बात है, विच आई लाइक अबाउट आवर इलेक्शंस, कोई हारे या जीते वो अलग बात है, ये एक वक्त है जब हर नेता, प्रधानमंत्री से लेकर नौ मंत्री तक, सब आके जनता के सामने हाथ फैलाते हैं, हमें वोट दे दो। और हमारा देश का शक्ति इसी में है कि कल जब हम तो 19 तारीख को शुरू कर रहे हैं वोटिंग तमिलनाडु में, हमारे पास ये शक्ति है हमारा खुद का कि हम जो जिसको चाहे हम उसको पावर में ले आए ना ले आए। ये नहीं बोल रहा हूँ कौन अच्छा है नहीं है, पर हमारा जनता का शक्ति है ये, और ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। एंड इसीलिए ये जो पर्व होता है हर 5 साल में एक बार, मैं मानता हूँ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
राइट सर, आते हैं टॉपिक पे। और
यस
टुडे एक फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट मुझे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लगा। कहा कि भाई देर आर मेनी वॉर्स अराउंड, मेनी वॉर्स आर कमिंग। एक्चुअली ही सेड मेनी वॉर्स आर
यस
कमिंग एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो
करेक्ट।
बड़ा संदेश भी है और इलेक्शन सीजन में बहुत अपील भी करेगा लोगों को,
या वो अलग बात है।
वो अलग बात है। लेकिन अब ये जो अभी जो लेटेस्ट है ईरान इसराइल वाला, तो वो ईरान इसराइल वाला जो है ये क्या देखते हैं आप? इट इज जस्ट अ स्कर्मिश पावा या कि कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके?
आई विल टेक इट अप कि जहाँ, हाँ, हम जयशंकर जी ने बताया कि मेनी वॉर्स आर कमिंग, और उस दृष्टिकोण से देखिए तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉर विच हैज हैपेंड। जो किस्सा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप पहले भी हमें पूछ चुके हो कि भाई क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। इस व्याख्या के बाद जब ईरान ने इसराइल के ऊपर 300 मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है, मेरे ख्याल में विश्व युद्ध 3 शुरू होने का संभावना बढ़ गया है। उस कगार में कड़े हैं जहां और लड़ाई हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर जयशंकर का जो व्याख्या है बहुत अहम है। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़ाई होने वाला है उसका क्या आकार है वो बाद में देखेंगे, ईरान और इसराइल के बीच में। उसमें आप देखिए किस तरीके से भी देखिए, ये ईरान भी हमारा दोस्त है, इसराइल भी हमारा दोस्त है। हमारा संबंध दोनों देशों के साथ अच्छे हैं और नेशनल इंटरेस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट लाई विद बोथ कंट्रीज, राइट? सो इट्स अ डिफिकल्ट, हमें वी हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस। जो जयशंकर जी ने बताया, उन्होंने बोला बहुत युद्ध आ रहे हैं, पर उस मामले में हमें ये जो हुआ है, इट टेल्स अस दैट हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इज इम्पोर्टेंट इन दिस, बिकॉज वी हैव द बेस्ट क्रेडेंशियल्स दुनिया में टू हैंडल द ऑनकमिंग प्रॉब्लम, राइट? तीसरी बात, जो भी हुआ है ये हम ये घड़ी वापस मोड़ नहीं सकते। इट देयर इज नो स्टेटस को एंटी इन दिस होल स्टोरी। दुनिया पहली बार ईरान ने किसी के साथ डायरेक्ट अटैक किया है, राइट? एंड इतना मास अटैक किया है, अभी तक इसराइल और ईरान का लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो या परख रहे हो पिछले 5-10 साल से क्या हो रहा था? ईरान वॉज हैड बिल्ट अ रिंग ऑफ फायर अराउंड इसराइल, हमास, हिजबुल्ला, शिया मिलिशिया से इसराइल, ये वो अगर आप वो नक्शा दिखाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा मैप, पहले मैप तो इस सीरिया और हाँ देखिए इधर देखिए हमास, हिजबुल्ला, सीरिया, इराक और हौतीस और बीच में ईरान, ये जो मिलिशियास के जरिए ये इसराइल के साथ लड़ रहा था वो इनडायरेक्ट लड़ाई हो रहा था और इसी मिलिशिया इन्हीं मिलिशियास के साथ ये सऊदी अरब के साथ भी लड़ रहा था, राइट
ये भी थाउजेंड कट स्ट्रेटजी है,
थाउजेंड कट स्ट्रेटजी है, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं आजकल, थाउजेंड कट स्ट्रेटजी, राइट हर एक वक्त, और इन्होंने हमास को भड़काया अगेंस्ट इसराइल टू डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स एंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं और इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, राइट इसराइल क्या कर रहा था आज तक, ये क्या है कि वो ये भी वो मिलिशियास के अगेंस्ट मार रहे थे, चाहे हमस हो, हिजबुल्ला हो या डमस्कस में फायरिंग हो या वगैरह वगैरह, और पहले भी इनका ये है कि इसराइल ने एक साइंटिस्ट ईरान का उसने मारवा दिया मेरे ख्याल में 2020 या 21 में, और वहाँ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी बर्बाद किया कवर्ट तरीके से, और कुछ दिन पहले जो डमस्कस में इन्होंने एयर अटैक किया इन द ईरानियन डिप्लोमेटिक एनक्लेव, वहाँ एक जहेदी नाम वो जनरल को मार दिया, इनडायरेक्ट हो रहा था पर डायरेक्ट पहली बार हो रहा है, और अहम बात यह है कि अब ईरान देखेंगे और इसराइल, इनका फासला 1500 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट मुठभेड़ नहीं हो सकता, इट इज ओनली नॉन कॉन्टैक्ट वॉर, और नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में क्या हो सकता है, ड्रोन, मिसाइल अटैक और एयर अटैक हो सकता है, नेवी भी काम नहीं कर सकते, राइट, सो दिस इज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये जो अटैक हुआ है इसमें क्या है कि ईरान का जो मिसाइल्स और ड्रोन्स कुछ जॉर्डन के ऊपर भी मार गिरे हैं, कुछ सऊदी के ऊपर, कुछ वगैरह वगैरह, और इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व है, फ्रांस भी इन्वॉल्व है और यूके भी इन्वॉल्व है, तो अगर आप देखेंगे एक इस साइड एक पूरा गुट है, ईरान, सीरिया, इराक, यमन, लेबनन, गाजा यानी हमास और इनके मिलिशिया, दूसरा साइड यूएसए, इसराइल, कुछ हद तक जॉर्डन और वगैरह वगैरह, फ्रांस, यूएस, यूके, सो इट्स ऑलमोस्ट अ बिग वॉर, अगर दूसरा ये शुरू हो गया और कोई रिटेलिएशन हो गया इसराइल की तरफ से तो ये सारे लड़ पड़ेंगे और ये कंट्रोल के स्थिति बाहर हो जाएगा, अगर यहाँ से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गया तो यहाँ से जो तेल बाहर जाएगा वो प्रॉब्लम में आएगा, आप देखिए ये इस इलाके में जो सुएस कैनाल हुआ या बाबल मंडप हुआ यानी यमन और इथियोपिया के बीच में और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज हुआ, ये तीनों बंद हो जाएंगे, अगर ये तीनों बंद हो जाएंगे या इसमें से आना जाना कम हो जाएगा तो तेल बढ़ जाएगा, तेल का कीमत वैसे भी बढ़ गया है, अगर तेल का इंटरनेशनल सप्लाई थोड़ा इधर उधर हो गया तो चाइना और रशिया भी इसमें आ जाएंगे, राइट, सो बिल्कुल हम एक वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़े हैं, ऊपर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है चल ही रहा है, और साउथ चाइना सी में देखिए फिलीपींस के साथ हर दूसरा दिन मुठभेड़ हो रहा है, मुठभेड़ नहीं, ये बोट कोलिशन वगैरह वगैरह हो रहा है चाइना के साथ, तो वहां भी प्रॉब्लम है, वहां ये तीन लड़ाई अलग अलग चल रहे हैं और इसके बीच में हम बैठे हैं, इसीलिए जो जयशंकर जी ने बोला लड़ाई काफी आने वाले हैं, क्योंकि अगर यहाँ स्थिति कंट्रोल से बाहर चला गया तो लड़ाई और भी होने वाला है, और जो दूसरा बात क्या बोली,
एक मैं इसमें रिजाइंडर मेरा ये है कि आपने कहा कि ये पूरा डिसरप्ट हो जाएगा, यू रिमेम्बर द ईरान इराक वॉर,
करेक्ट,
तो जब वो ईरान इराक वॉर जब चल रहा था that time I was sailing with the Shipping Corporation of India as a marine engineer, as a fifth engineer. तो उस वक्त जो थे हम वो जाया करते थे गल्फ में, और गल्फ में हम जाते थे बिल्कुल आपका जो इराक का बॉर्डर है उसके पास में एक उनका टर्मिनल हुआ करता है अर्ग आइलैंड करके, कुवैत के सामने होता है, कुवैत के सामने ईरान में, तो वो अर्ग आइलैंड में हम पिकअप किया करते थे वहाँ से क्रूड ऑयल, और उसको फिर यहाँ लाया करते थे इंडिया में। तो उस टाइम पे भी एट द हाइट ऑफ द वॉर वी आर गोइंग राइट अप टू खर्क आइलैंड। मैं शेयर करता हूँ एक मिनट ये वो दर्शकों के लिए, आपको तो पता है, बट फॉर द पब्लिक मैं इसे एक मिनट ये शेयर करता हूँ स्क्रीन टू सी कि ये खर्क आइलैंड जो है ये एक्चुअली कहाँ पर है। ये देखिए आपके कर्क आइलैंड जो है इराक के बॉर्डर के पास कुवैत के सामने यहाँ पर है, यहाँ पर हम
मैं मानता हूँ।
तो उस वक्त यदि ये डिसरप्ट नहीं हुई सप्लाई तो अब क्यों हो जाएगी?
देखिए वैसे तो आप जो बोल रहे हो उसमें दुख है, बट फर्क ये है कि ऑलरेडी आपका रेड सी के थ्रू डिस्टर्ब हो गया बबल मंडप के थ्रू, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि बबल मंडप के थ्रू रशिया और चाइना के जहाज जा रहे हैं। अब हमें सब पता है कि रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ हैं। अगर ईरान ने कुछ किया तो उनका तेल बंद हो जाएगा, अगर उनका तेल बंद हो जाएगा तो डिस्ट्रप्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है हौतीस ने बंद किया, ऊपर बाकी बंद कर देंगे इनका ईरान का। अगर वो कुछ हुआ तो ईरान भी कुछ करेगा, तो बाकी यूएई और इनका भी सऊदी अरेबिया के भी प्रॉब्लम आएगा। खैर सऊदी अरेबिया से आप रेड सी के जरिए भी आप निकाल सकते हो थ्रू सुएज कनाल, बट वो लंबा रास्ता है।
So, थोड़ा सा लूज कर गया आपके जो है वो बीच में डिसरप्ट हो गया था एक मिनट।
ओके दोबारा वो मैप दिखाएंगे तो मैं वापस हमारा मैप दिखाएंगे तो मैं दोबारा बताता हूँ। हाँ आप यहाँ देखिए ये जो यमन के नीचे रेड सी बबल मंडप में वैसे भी प्रॉब्लम है, आजकल वहां से सिर्फ रशिया और चाइना के वेसल्स जा रहे हैं, बाकियों का थोड़ा प्रॉब्लम है, वहां डिसरप्शन ऑलरेडी हो चुका है, सुएज कैनाल में हो चुका है, राइट। बचा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अगर कल के दिन लड़ाई छिड़ गया इजराइल और ईरान के बीच में और यूएसए वगैरह भी शामिल हो गए, तो सबसे पहले वो इजराइल ईरान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, ये कुछ करेंगे जो भी उनका क्रूड बाहर नहीं जाएगा। अगर वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से वहाँ डिसरप्ट हो गया तो रशिया और चाइना का सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगा, फिर इजराइल ईरान भी कुछ करेगा, ईरान भी कुछ करेगा तो बाकियों के ऊपर भी असर होएगा। सो ओवरऑल वी आर एट अ स्टेज, क्योंकि इन सब इसी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जब ईरान और इराक का लड़ाई उन दिनों में होता था सिर्फ उन दो देशों का था, बाकी देश शामिल नहीं थे। अभी क्या है कि इट इज नॉट ईरान एंड इजराइल ओनली, कि आपके सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, फ्रांस हुआ, यूके हुआ, यूएस हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, सब शामिल हैं इधर, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम। सो डिसरप्शन ऑफ ऑयल एनर्जी सप्लाईज एंड अदर सप्लाईज इज फुल्ली ऑन द कार्ड्स अगर अगला कुछ हुआ तो। और आज जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर ने भी बता दिया कि हम रिटेलिएटरी एक्शन करेंगे, क्या करेंगे वो देखने वाली बात है, क्या वो रिटेलिएटरी एक्शन विल लीड टू एस्केलेशन, अगर एस्केलेशन हो गया तो विल सी वेयर इट गोज, क्योंकि अभी लाइक आई सेड इट इज टेंस, वी डोंट नो कहां जाएगा, राइट। सो विल इट बी अ डायरेक्ट अटैक और इनडायरेक्ट अटैक, हाउ विल ईरान रिएक्ट वो डायरेक्ट करेगा या इनडायरेक्ट करेगा। अगर ये डायरेक्ट डायरेक्ट हो गया तो देखिए ये इट विल गो ऑन। और आप सोचिए 7 अक्टूबर को ये कहानी शुरू हुआ था बिटवीन इजराइल एंड हमास एंड गाजा,
करेक्ट करेक्ट,
वहां से लेकर फिर बढ़ गया धीरे धीरे, वो दायरा बढ़ गया हिजबुल्ला और सीरिया का मिलिशियास के साथ शुरू हुआ इजराइल का, फिर हौतीस बीच में आ गए, फिर वो यू नो अभी ये पिछले महीने अगर आपको याद है ईरान ने मिसाइल दागे थे वो एक पाकिस्तान के अंदर, फिर इराक में और सीरिया में भी इन्होंने अटैक किया था, फिर वो बिल्कुल चुप गया वो, फिर यू नो द होल आर्क इज एक्सपेंडिंग। अभी ये व्याख्या हो गया, अगर आप पूरा करंट करोगे तो ये द होल थिंग इज एक्सपेंडिंग एस्केलेटिंग ऑन इट्स ओन, और इसमें कोई रोकने वाला है ही नहीं। वो रोकने वाला है ही नहीं क्यों, ये पांचों वीटो एजेंसी पावर वाले सब इसमें शामिल हैं, वही प्रॉब्लम है। सो इसीलिए इसमें कंट्रोल नहीं है, ये इट्स लाइक अ अनकंट्रोल्ड मशीन अभी जा रहा है। क्या सबके अंदर ये यू नो समझ आएगा कि जो भी हो रहा है वो सबके लिए यूजलेस है, तो तब तक ये रुकेगा नहीं। इसीलिए
इसका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है?
मेरे ख्याल में न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बहुत दूर है, क्योंकि ना इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ना ईरान के साथ, राइट, एंड आई डोंट थिंक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अभी बहुत दूर है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के लिए, बट बात यह है कि रिटेलिएशन फ्रॉम इजराइल कैन कम अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये पहले भी इन्होंने किया है, राइट? अगर वो हो गया तो फिर एस्केलेशन तो होगा ही। तो इट इज टू सी, आई गो बैक टू व्हाट डॉक्टर जयशंकर सेड, बहुत लड़ाई होने वाला है अभी वो, यू नो दैट्स अब आप वो देखिए, और हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप किस लिए चाहिए? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इसलिए चाहिए, या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल में इंडिया इज इन अ पोजिशन टू मीडिएट। अभी देखिए ये मैप हटा सकते हैं, वैसे भी बात करेंगे अभी। सो अगर हम देखेंगे तो इंडिया का दोस्त है इजराइल और ईरान, हम दोनों के बीच में मीडिएट कर सकते हैं। ये पांचों सुपर पावर या जो वीटो पावर वो किसी के साथ पक्ष में बात नहीं कर सकता, कोई सुनेगा नहीं, तो उस हालत में हम बात कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अच्छा लीडरशिप चाहिए, विश्वसनीय लीडरशिप चाहिए, मजबूती चाहिए, दृढ़ता चाहिए, राइट? क्योंकि सब सुनेंगे, अभी यही तो निकला आया है। एंड हमारा जो मेल मिलाप है खास करके सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ, बाकी पावर्स जो हैं वहां उनके साथ अच्छा है, उनके जरिए उनके माध्यम हम थोड़ा दोनों से बात कर सकते हैं कि भाई इसको आगे मत बढ़ाओ। रशिया के साथ बात कर सकते हैं, हम यूएस के साथ भी बात कर सकते हैं। सो वी आर इन अ बेस्ट पोजिशन, राइट? एक और चीज है, ये बाकी जो कोलेटरल डैमेज शुरू हो जाएगा, अभी पायरेसी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसके लिए आपको याद है ऑलरेडी हमारे 12 जहाज उस इलाके में हैं एंटी पायरेसी रोल में, राइट? ये पीस कीपिंग रोल में भी बदल सकता है कल के दिन, यू नो वी कैन गो टू द यूएन, यूएन कैन से ओके इंडिया विल डू, एंड ऑल दिस इज डेंजरस। डेंजरस इसीलिए है कि ये टफ है, ये कोई इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सो दैट इज वाई वी नीड वेरी गुड लीडरशिप। एक और चीज है, अगर वहां बंद हो गया तो हमारा तेल आना भी थोड़ा प्रॉब्लम है। हमारे लिए तेल ही नहीं, हमारा फर्टिलाइजर्स भी काफी उस इलाके से आते हैं, राइट? सो हमारा फर्टिलाइजर्स का प्रॉब्लम है, हमारा तेल का प्रॉब्लम है। सो वी नीड गुड लीडरशिप टू एंश्योर वो हमारा एनर्जी सप्लाई ना रोके। हालांकि हम ओमान के जरिए लेके आ सकते हैं, लैंड रूट ओपन कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल रूट। सो इंटरनली ऑल्सो वी विल यू नो वी नीड गुड लीडरशिप। तीसरी बात, जब इतने लड़ाई हो रहे हैं हमारे चारों तरफ, याद रखिए सोचे ना समय भी कुछ हो रहा है, कुछ तो हमारे ऊपर भी चिंगारी पड़ेगा। वी माइट बी ड्रॉन इन टू अ कॉन्फ्लिक्ट विच वी डोंट वॉन्ट, राइट। ये मौका है चाइना के लिए, कुछ करो साउथ चाइना सी में, बाकी सब यहाँ लड़ रहे हैं तो हम अपना शुरू कर देंगे वहां, तो उस हालत में हमारा क्या रिएक्शन होगा। सो आई थिंक वी आर इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मेरा यही है कि ये सब आया है जब हमारा इलेक्शन चल रहे हैं और हमारा पूरा लीडरशिप इलेक्शन में बिजी है, और यहाँ हमें फोकस चाहिए वो उतना होगा ही नहीं। और मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से ये महीना निकल जाए, ये इलेक्शन खत्म हो जाए, ताकि हमें एक अच्छा गवर्नमेंट हो तो ये स्थिति कुछ हम सुधार सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति यहाँ से जाने वाला नहीं है। और ना इसराइल चुप रहेगा ना ईरान चुप रहेगा, पर किस तरीके से एस्केलेट होगा वो देखने वाली बात है।
एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनकी कैपेसिटीज के बारे में, इनकी दोनों की कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने 300 से ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ये सब छोड़ी और उन्होंने सारी की सारी इंटरसेप्ट कर ली। लेकिन अगर इतनी ही मिसाइल्स इसराइल इनके ऊपर छोड़ता है, इसराइल ईरान के ऊपर, तो क्या ये कर पाएंगे इनका एयर डिफेंस का क्या?
आपने बता दिया, मैं ये कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। ओके, लेट अस लुक एट इसराइल का क्या कैपेसिटी है, इसराइल के बारे में बात करेंगे, फिर ईरान के बारे में बात करेंगे। इसराइल का कैपेसिटी ये है आज के दिन, उसका एयरफोर्स अच्छा है, उसके पास मिसाइल्स हैं, हम सबको पता है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसका कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क और सब कुछ बढ़िया है, इसमें दो राय नहीं। उसके पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, उसके पास सब कवर्ट ऑपरेशंस का कैपेबिलिटी है, उसका इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो वो है ताकत इसराइल का और वो है कैपेबिलिटी इसराइल का, वो इट कैन, उसने ऑलरेडी ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया इसराइल ने व्हेन इट हिट द डमास्कस में वो एम्बेसी को, इट ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड ये जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी उसका डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, राइट। इसराइल हैज गॉट मेनी ऑप्शंस, जो भी करना चाहता है, ट्रेमेंडस ऑप्शंस, ओके, वेदर यू कैन फायर मिसाइल्स ऑल्सो, ऑल दैट, एंड इट हैज गॉट अ कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस रिकॉग्निशंस कमांड एंड कंट्रोल सेटअप टू गो विद इट, और उनका मिलिट्री सिस्टम जो है ना बहुत शार्प है, सो दिस इज वॉट इसराइल हैज गॉट। इसराइल कैन ऑल्सो हैंडल ऑल द मिलिशियास, अभी तक जो भी है मिलिशियास जो कर रहे हैं वो सिर्फ मिसाइल फायर कर रहे हैं, ये मिलिशियास कोई आके इन इसराइल आर्मी को अटैक करने का उनका क्षमता नहीं है, जिस दिन वो करेंगे वो रोंदे जाएंगे, इसमें मेरे को डाउट नहीं है, क्योंकि ये दीज मिलिशियास आर नॉट ट्रेंड टू फाइट, नॉट ट्रेंड टू फाइट ऑफेंसिवली एंड कम इन टू अटैक वगैरह, ये कर नहीं सकते, ये इन्फेंट्री नहीं है जिस तरह रेगुलर आर्मी नहीं है वो, ये बात अलग है, वो टेररिज्म वगैरह कर सकते हैं, वो अपने इलाके में कुछ कर सकते हैं जिस तरीके से हमास कर रहे हैं, पर अटैक करना मुश्किल है, और अभी इसराइल आर्मी जो है वो बिल्कुल तैनात है, तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। सो ये है इसराइल, बट इसराइल के कुछ वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस क्या है, वो इलाका छोटा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, वो सारे इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं चारों तरफ, बट इसराइल ने पहले भी ये जेल लिया,
नैरो एंड पे सिर्फ 40 किलोमीटर ही तो है, वो
40 किलोमीटर है, जगह नहीं है, आबादी नहीं है, बट उसका अलायंसेस अच्छे हैं, यूएसए उसको छोड़ेगा नहीं, उसका हाथ नहीं छोड़ेगा, राइट। सो ये सब इसराइल की तरफ कैपेसिटी है। लेट्स लुक एट ईरान, ईरान का क्या कैपेसिटी है, ईरान का मेजर कैपेसिटी है, ये ऑलरेडी इसराइल को घेर के बैठा है, जिस तरीके से हमने मैप में दिखाया, उसका मिलिशियास पावरफुल मिलिशियास है, वो फायर करते रहेंगे, फायर करते रहेंगे, ये जमीन पकड़ नहीं सकते, अटैक नहीं कर पाएंगे, पर आम लोगों के ऊपर टेरर कहर मचा सकते हैं, वो एक क्षमता है इसराइल ईरान के पास, राइट, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, और इन लोगों को टेक्नोलॉजी वगैरह देके, मिसाइल्स वगैरह देके, दिल कीप द वॉर गोइंग। ईरान के पास वो अपना अलायंस,
इकोनॉमिक कैपेसिटी है क्या ईरान के पास?
या ईरान के पास है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ईरान के पास इस चीज करने के लिए कैपेसिटी है, और इसने ये कैपेसिटी आज से नहीं, पिछले 10 साल से इसने फिट बढ़ाया है, धीरे 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 बढ़ाया है। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखो, हिजबुल्ला के पास ही अनुमान लगाया जा सकता, दिस जो भी लेते हो उनके पास 150 से लेकर 300 रॉकेट हो सकता है, रॉकेट मिसाइल कॉम्बिनेशन, तो उनके इनके पास है ये मान के चलिए। और इसका मैंने एक रिसर्च भी किया है, इनफैक्ट एक जर्नल में पेपर भी पब्लिश हो रहा है, टेरर का कैपेसिटी है ईरान के पास, फैक्ट है ये। ओके, सेकंड थिंग, इसराइल के पास क्या है? इसराइल के पास एयरफोर्स नहीं है, इसराइल के पास सर्वेलेंस स्पेस कैपेबिलिटी वगैरह नहीं
है, जो
ईरान के पास नहीं है, ईरान के पास, ईरान डजंट हैव स्पेस कैपेबिलिटी, ईडब्ल्यू कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी वगैरह। बट ईरान के पास क्या है? ईरान के पास एक सॉलिड मिसाइल फोर्स है, उसके पास एक सॉलिड ड्रोन फोर्स है, राइट, एंड द मिलिशियस। आप सोचिए, ये जो अटैक हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम मारने वाले हैं, सबको पता था कि ये मारने वाले हैं, और सबका फोकस ईरान के ऊपर था, तो इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह किया। और तो अगर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे किया कि एक संदेशा भेजने के लिए ये सब किया, 300 मिसाइल्स वगैरह के साथ, ये सिर्फ ईरान से नहीं है, बाकी जगह से भी ये फायर हुआ है, तो एक्चुअली इनके पास कितना स्टॉक होगा? जैसे मैंने बोला, हिजबुल्ला के पास ही 1.5 लाख रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, तो उसमें कोई इनका ताकत है, राइट? अगर अचानक अटैक कर देंगे तो कुछ तो नष्ट हो घुस जाएंगे, आफ्टरऑल ये तो प्रीप्रोग्राम्ड अटैक था, ये डिटेक्टेड अटैक था, अगर सरप्राइज अटैक किया तो क्या इसराइल सबको रोक पाएगा? ये एक प्रश्न चिन्ह है, हमें पता नहीं है। पर ईरान के पास क्या नहीं है? ईरान के पास वो क्षमता नहीं है कि वो इसराइल को डायरेक्ट अटैक करे थ्रू एयरफोर्स, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना है उसके पास नेवी है। ओके, बट इसराइल हैज द स्ट्रेंथ ऑफ रशिया एंड चाइना विद इट, क्योंकि दोनों उसको बैक करते हैं। सो ये देखने वाली बात है कि क्या एंड ये इट इज पॉसिबल, हमें पता नहीं है कि एक कल के दिन ये बोले कि भाई मेरे पास परमाणु हथियार है, वो दिखा दे, चाहे वो फायर करे या ना करे, उसके पास वो है, राइट? एंड इसराइल के पास ये क्षमता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है वो थ्रू इट्स मिलिशियास, जो भी है। सो इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट इसराइल, इट इज दे कैन डू अगेंस्ट अदर्स ऑल्सो। सो दिस जनरली आर
यू मीन ईरान, ईरान कैन क्लोज डाउन स्ट्रेट्स
ऑफ हॉर्मुज? या सॉरी, आई एम कंफ्यूजिंग, आई एम सॉरी, ईरान कैन क्लोज डाउन द ईरान, अगेन लेट मी रिपीट, ईरान हैज मिलिशियास व्हिच कैन क्लोज डाउन द बाबल मंडप और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड डिसरप्ट ऑयल सप्लाईज इन द वर्ल्ड, दो उसका होने का अंदेशा बहुत कम है, बट इट कैन डू, राइट? सो बट वन मोर थिंग, हमें देखने वाली बात है कि ईरान ऑल्सो नोस कि इन्होंने 300 मिसाइल फायर किया, तो ये 300 में उनका ये तो होगा कि कुछ तो वहां जाके डैमेज करेगा, कुछ डैमेज नहीं हुआ वो रोक सकते हैं, तो समवेयर देयर इज अ वीकनेस इन दिस मिसाइल फोर्स, दो दे हैव ब्रूट स्ट्रेंथ, there is a weakness also, they have a capability, agar ye kal ke jaake strait of hormuz ko band kar dein ya red sea entry ko band kar dein to fir iran ka kya hoga ye bhi dekhne wali baat hai, fir china aur russia kya react kar raha ye bhi dekhne wali baat hai, so both israel aur iran unke paas apna apna capability hai, apna apna weaknesses hai,
to isme ek aur
या बोलिए
जी, दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जनरल शंकर से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, दोनों से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें, बाद में शेयर भी करें। What happens if there is an all-out war? कितने दिनों तक इसराइल सस्टेन कर सकता है, कितने दिनों तक ईरान सस्टेन कर सकता है?
देखिए, ईरान can sustain quite a bit because ईरान has been exporting. ईरान के पास एयरफोर्स तो है ही नहीं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं. और ये जो वॉर जो भी छिड़ेगा, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, कोई किसी मुठभेड़ नहीं होगा. ये नहीं कि वो उसने इन्फेंट्री के साथ अटैक किया, टैंक भेजने की जरूरत है, ये सब एरियल वॉर ही होगा, राइट? सो ईरान हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स, सो इट कैन सस्टेन जिस तरीके से वो लड़ रहा है. इसराइल का लिमिटेड कैपेबिलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी वो 6 महीने से वो फायर कर रहे जा रहा है. इट हैज टू डिपेंड ऑन यूएसए, एंड यूएसए हैज द कैपेबिलिटी टू सपोर्ट इसराइल. सो कैपेबिलिटी वाइज वो अपना अपना कैपेबिलिटी दोनों के पास है, दोनों के पास, राइट? जो भी कर सकते हैं. बट ये सोचना कि ये लगातार छिड़ जाएगा लड़ाई, मेरे ख्याल में नहीं होगा. कि जिस तरीके से पहले 10 दिन हमस के साथ लड़ाई हुआ, वो उस टाइप का लड़ाई नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट ये है कि इसराइल और ईरान के बीच में 1500 किलोमीटर का फासला है. तो यही मिसाइल और ड्रोन अटैक ही चलता रहेगा. एयर इसराइल कैन डू एन एयर अटैक ऑन ईरान, ईरान कांट डू इट बैक, बिकॉज इसराइल क्या है, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स के साथ पहुंच सकते हैं. बट वहां पहुंचने के लिए इट हैज टू ओवरफ्लाई अदर एयर स्पेस, वहां थोड़ा कठिनाई है. बट आई नोइंग ईरान, इसराइल वो कर लेंगे कुछ.
सो उनके पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है,
स्टेल्थ कैपेबिलिटी है. वो फिर वो ऊपर से चले जाएंगे, नीचे से नहीं जाएंगे, ऊपर. दे'ल गो वाया सीरिया एंड इराक, वहाँ इनको रोकने वाला कोई है ही नहीं. और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, देखिए इफ यू गो बैक, इन्होंने किया था रेड ओवर एनटीबी, कितना 5,000 किलोमीटर जाके उन्होंने किया था. तो ये उस वो क्षमता है इसराइल के पास, हमें बोलना नहीं चाहिए. और इसराइल के पास ये भी क्षमता है कि वो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करें. सो दोनों के पास अपना अपना स्ट्रेंथ है, दोनों के पास सस्टेनेबिलिटी भी है और दोनों के पास वीकनेसेस भी है. बात यह है कि कौन अगला चाल किस तरीके से लेगा और वो रेस्पॉन्स क्या होगा. और ये जो बाहर बैठे हैं, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस, ये करेंगे क्या? तो ये किस लेवल तक जाएगा और किस टाइम फ्रेम में जाएगा,
और इंडिया क्या करेगा?
देखिए, इंडिया का मैंने बता दिया, इंडिया इज इन अ पोल पोजीशन. इंडिया के साथ वैसे किसी का लड़ाई नहीं है इनमें. तो इंडिया के अच्छे तालुकात हैं सबके साथ इस इलाके में, और इंडिया इज द मोस्ट ट्रस्टेड कंट्री इस माहौल में. सब ट्रस्ट करते हैं सिवाय चाइना को. चाइना छोड़ दीजिए, आप चाइना को भूल जाइए इस कहानी में. चाइना भी कर क्या रहा है, वो ऐसे बैठा है बेवकूफ की तरह. उसको तो कुछ करने के लिए उसको तो पता ही नहीं रहा. वो तो अपना ये है कि भाई मेरा तेल मिलेगा कि नहीं, बस वो देख रहा है. सो कोई चाइना की ओर मुड़ के देख भी नहीं रहा. तो अगर चाइना की ओर छोड़ दो, रशिया हमें ट्रस्ट करता है, यूएसए हमें ट्रस्ट करता है, यूके और फ्रांस हमें ट्रस्ट करते हैं, यूएई हमें ट्रस्ट करता है, सऊदी ट्रस्ट करता है, इसराइल और ईरान ट्रस्ट करता है, यहाँ तक तालिबान भी हमें ट्रस्ट करता है ज्यादा पाकिस्तान से. तो हमारा पोजीशन अच्छा है एक्चुअली. ये मौका है इंडिया के लिए. और मेरा यही मैं सोचता रहता हूँ, अगर ये नॉर्मल दिन होता तो जयशंकर जी वहीं होते आजकल और वहां चक्कर लगाते रहते कि एक दूसरे से भाई मेल मिलाप करो, डिप्लोमेटिक एक्शन शुरू करो. क्योंकि अभी ये इलेक्शन का टाइम है, तो सबका हमारा फोकस इधर है. हमें एक सुनहरा मौका खो रहे हैं अगर हम कुछ नहीं करेंगे. तो हम बार बार बताते आते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जगह चाहिए, यूएन का तबादला चाहिए, हमें सब कुछ. ये मौका है टू डेमोन्स्ट्रेट के वी आर अ वर्ल्ड पावर बाय गेटिंग पीपल टू कम टू द टेबल. एंड इस मौके पे आई होप ये चलेगा, ऐसी बात नहीं है. हमारा जो गवर्नमेंट जो भी बनेगा, एक मजबूत गवर्नमेंट बनेगा और एक अच्छा स्टेप लेगा इस मामले में. तो ये मौका बार बार एक देश को मिलता नहीं है. जो जो मैं वापस वही, आपने जो बोला, डॉक्टर जयशंकर ने बोला, और लड़ाई होंगे, मजबूत लीडरशिप चाहिए, मजबूत लीडरशिप लड़ने के लिए नहीं चाहिए हमें आज का दिन, मजबूत लीडरशिप हमें चाहिए शांति स्थापित करने के लिए विश्व में, और हमें ये मौका बार बार किसी देश को में नहीं मिलता। ये है मेरा राय, आपका और कुछ इसमें है तो पूछ लीजिए।
चलिए अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्न।